نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت سے آج ہم ایک نئی بک شروع کریں گے، اور اس کتاب کا نام ہے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں خواتین کی ذمہ داریاں. یہ کتاب ڈاکٹر فضل علی صاحب کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. نام ہی بتا رہا ہے کہ اس کتاب کا ٹاپک کیا ہوگا. تھوڑی سی بات کہ کتاب کو پڑھیں گے یا ہم اس سے فائدہ کیسے لیں گے. یہ جو باتیں میں ابھی کر رہی ہوں یہ آپ سنیں گے، اور چونکہ یہ ایک کلاس ہے، کلاس میں بیٹھنے میں صرف بندہ کتاب نہیں لے رہا ہوتا بلکہ اس سے متعلقہ چیزوں کو بھی لیتا ہے، تو آپ کے کاغذ کی آواز، آپ کے قلم کے چلنے کی آواز، آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اس وقت اہم ہیں. تو آپ نے ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کرنی ہے کہ جو بھی بات میں آپ کے ساتھ رکھوں آپ اس کو نوٹ کرنے کی کوشش کریں. جہاں کتاب کھولنی ہوگی میں آپ کو بتاؤں گی. ابھی شروع کی باتیں صرف آپ کو یہ فائدہ دیں گی کہ آخر ہم یہ ٹاپک کیوں پڑھیں، ہم یہ کتاب کیوں پڑھیں. تو یہ باتیں کتاب میں لکھی بھی ہوں تو جب تک آپ خود اس کو سمجھ نہ لیں بات نہیں سمجھ آتی. پھر جہاں پیج کھولنا ہوگا میں آپ کو پیج بھی کھلواؤں گی. انشاءاللہ ہم شروع میں بک کا گو تھرو کریں گے کہ اس موضوع کے اندر کیا کیا چیزیں آنے والی ہیں، اور بعد میں انشاءاللہ انٹرو کے بعد جب باقاعدہ بک شروع ہوگی تو پھر ہم سب فالو کیا کریں گے. ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ آپ اس سے فائدہ کیسے بھرپور اٹھا سکتے ہیں. پہلی بات ہے کہ ظاہر ہے آپ کے ہاتھوں میں سو کے بکس ہیں، لیکن ہو سکتا ہے بعد میں ان آڈیو سے کوئی ایسا بندہ فائدہ اٹھائے جس کے پاس بک نہیں ہے. تو دونوں طرح سے فائدہ ہو سکتا ہے. کتاب سامنے ہو تو پھر ایک انسان اس کو ریفرنس کو کوٹ کر سکتا ہے، دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے. لیکن آپ کے اس سے فائدہ لینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک نوٹ بک ہو جو الگ سے ہی اگر اسی کام کے لیے رکھی جائے تو پھر بعد میں آپ اپنے وہ فٹ نوٹس اور اپنے نوٹس کو اور اس بک کو ملا کر آگے دوسروں کو بھی سکھا سکتے ہیں. اور اب آپ نے انشاءاللہ یہی کام کرنا ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے پڑھنا، ہم کچھ سیکھتے ہیں، لیکن دوسرا طریقہ ہوتا ہے سکھانے کو سیکھنا کہ ہم نے سکھانا کیسے ہے. تو یاد دہانی کے لیے کہوں گی کہ یہ کتاب ہم اپنی بحریہ ٹاؤن کی کلاس لاہور میں جو ہو رہی ہے، آپ لوگ اس وقت 27 12 کی تکمیل پہ ہیں تقریباً، یہاں اس بک کو پڑھ رہے ہیں. آپ کو اس لیول پہ اس کتاب کو پڑھانے کا مقصد کیا ہے کہ جب قرآن کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے تو ایک دم جب وہ ٹوٹتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم اس کے بعد کیا کریں گے. پہلے میں آپ سے ہی پوچھتی ہوں کہ کیا آپ کے ذہنوں میں یہ خوف ہے کہ قرآن پورا ہو رہا ہے، اچھا پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے، اور جیسے دھڑکا سا لگ جاتا ہے آپ کے ذہنوں میں یہ خیال؟ جی، اب آپ دیکھیے کچھ تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کب ختم ہو، کوئی وہ تو نہیں ہے، کوئی ایک بھی ایسا ہے جو کہتا ہے چلو گن رہی ہوں انگلیوں پہ دن اور جب یہ ختم ہوگا تو پورا ہو گیا. یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. آپ نے میں نے تو اصل میں جو قرآن پڑھ کر اپنے اندر وہ تڑپ پیدا کی ہے کہ جو لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے ضروری ہوتی ہے. تو کچھ لوگ پوچھتے ہیں کورسز کب پورے ہوں گے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا. میری نظر میں اب آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، ہم نے اسی رستوں پہ چلنا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ قرآن کا سفر آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، آگے آپ کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں، لیکن ہم خاص طور پہ اس وقت اس بک کے ناطے سے تھوڑی سی بات کریں گے کہ اگر آج کے دور میں میں اپنے آپ کو لے کر اور ارد گرد جتنے بھی دنیا میں آپ جیسے ماشاء اللہ لوگ ہیں، یعنی جن کے ارد گرد ہم لوگ بیٹھتے ہیں، وہاں ایک سوال بہت اٹھتا ہے جب بھی سسٹرز قرآن کلاسز میں آتی ہیں یا کوئی سیکھنے سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ گھر کی ذمہ داریاں ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، سسرال کی ذمہ داریاں ہیں، کھانا پکانے کی ذمہ داریاں ہیں. یعنی ایک عورت کے ناطے سے عموماً ہمارے ذہنوں میں یہی سوال ہے کہ عورت پہ بہت ساری گھریلو ذمہ داریاں ہیں. تو اس کتاب میں ہم دیکھیں گے کہ جس طرح ماں ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داریاں ہیں، بہن ہونے کے، بیٹی ہونے کے، بہو ہونے کے، ایک گھر کی مالک ہونے کے ناطے سے ہم سب اپنی ذمہ داریاں اور رسپانسبلٹیز میں ہیں، کیا لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، جس کو عرف عام میں ہم تبلیغ کہہ سکتے ہیں، خیر کی بات کہنا کہہ سکتے ہیں، پڑھنا پڑھانا کہہ سکتے ہیں، دین کے لیے خود کو ڈیووٹ کرنا کہہ سکتے ہیں، اس کا جو بھی نام لے لیں باتیں ساری سچ ہیں، کیا اس سلسلے میں اللہ نے عورتوں پہ بھی کوئی ذمہ داری ڈالی ہے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس دھائی یا بلکہ اس سینچری میں جو گزر رہی ہے اور پچھلی میں یہ کانسیپٹ عام کر دیا گیا. آج جس دور میں میں اور آپ رہتے ہیں اس میں یہ کانسیپٹ یہ دے دیا گیا ہے दीन का काम करना कराना या तबलीग का करना कराना ये सिर्फ मर्दों का काम है। औरतों में से किसी से पूछ लें या घर वालों से पूछ लें तो वो क्या कहेंगे कि औरत का काम क्या है, खाना पकाए और घर साफ करे। पाकिस्तान में आप हैं तो मासियों से काम कराएं, सीधी सी जो बात है, करें ना भी तो कराना भी आज बड़ा बहुत एक मुश्किल महाज है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बाहर के मुल्कों में देखें तो सारे काम खुद करना। बहुत कम लोग नेकी की दावत देना या दीन सीखना सिखाना या इस काम को भी जिम्मेदारी समझते हैं। फिर मैं दोहराऊंगी कि कोई भी सिस्टर अपने घर में से ये नहीं कर सकती कि सिर्फ खाना पकाए और सफाई के ऊपर नजर ना दे, गोया कि उसने आधी चीज़ की आधी नहीं की। आप सब कुछ करें घर में से, सिर्फ एक हफ्ते के लिए कपड़े धोने धुलाने छोड़ दें तो अगले हफ्ते में आप देखेंगे घर में क्योस होना शुरू होगा। किसी को सॉक्स नहीं मिल रहे, किसी को कोई अपने यानी दुपट्टा नहीं मिल रहा, स्कार्फ नहीं मिल रहा। सब मानते हैं ना हमारे घर का निज़ाम क्यों सही चलता है जब हम सारे कामों को ठीक तरीके से कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम नेकी के काम के और बुराई के रोकने में अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं करेंगे तो वही होगा जो आज हो रहा है। तकलीफ के साथ कहूंगी, दुख के साथ भी कह सकती हूँ और दुआ के साथ भी कहूंगी कि अल्लाह बेहतरी कर दे कि आज हम मुसलमानों की अपनी जिंदगी में इस जिम्मेदारी की कोई अहमियत को नहीं महसूस करता। बाहर गंदगी है, लोग कहते हैं सड़कें टूटी होती हैं, गटर बहते हैं और मक्खियां हैं और मच्छर हैं, जाहरी गंदगी लोग देखते हैं। मैं सोचती हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा जहनी गंदगी आम हो गई है। कल का एक ट्रैवल और मैंने ये सोचा कि ये मुझे अल्लाह ने ही करवाया एक्सपीरियंस। रात को मेरी हमारी फ़्लाइट थी, कराची से हम लोग लाहौर आ रहे थे। दोनों ही हम आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान का हिस्सा है, दोनों जगहों से हमें मोहब्बत है। कल के ट्रैवल में जो अल्लाह ताला ने मुझे एक एक्सपीरियंस कराया मैं अब बिल्कुल जान के शेयर करूंगी। और मैंने वो जो जिनके साथ ये मेरा मामला हुआ मैंने उनको भी कहा कि सिस्टर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे कल के लेसन, और मैंने इस बुक को पढ़ाना है तो उसके लिए जहनी तौर पर तैयार किया। हुआ क्या, इन शॉर्ट सुनाऊंगी, सिर्फ मैं आपको इस मौजू की अहमियत का एहसास दिलाऊंगी। हमारी लेट नाइट फ्लाइट थी और जब हम एयरपोर्ट पे थे तो जितनी देर अंदर बैठते हैं तो वहाँ लोगों को देखना मुझे यकीन करें किताब पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा देता है। तकरीबन 3 घंटे के करीब एयरपोर्ट के अंदर रही, बाहर का रोड का तो बात अलग करती हूँ, लेकिन जो चीज़ मेरा जैसा सोचने वाला बंदा देखता है जाके कहीं भी, कि जब मैं पेरिस के किसी एयरपोर्ट पर इंतज़ार में बैठी होती हूँ तो मेरे सामने कौन से लोग होते हैं, क्या हालात होते हैं एयरपोर्ट पे, जो मंज़र मैंने देखे वहाँ बैठ के अपनी आदत के मुताबिक, तो मेरे जहन में बस एक ही क्वेश्चन था कि आखिर क्यों, आखिर क्यों, आखिर क्यों। हम जब वेस्ट में बैठते हैं तो हम नॉन मुस्लिम्स को देखते हैं, हमारे दिल में उनके लिए दुआ उठती है, रहम का जज्बा उभरता है, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको भी वो दौलत दे जो अल्लाह ने हम मुसलमानों को दी है, यानी इस्लाम और ईमान की दौलत है। यानी जो कुछ भी था आपके लिए रूटीन की चीज़ हो सकती है लेकिन मैं उसको हज़म नहीं कर पाती। अगर वेस्टर्न एक औरत पूरे ऐसे गेटअप में दिखती है कि उसका जिस्म पूरा दिखता है तो मैं सोचती हूँ कि चूंकि अंदर ईमान ही नहीं है, जिसने मेयार देना था अच्छे, जिसने उसको रोकना था। जो सबसे वर्स्ट चीज़ मैंने कल वहाँ अपने जहाज़ के इंतज़ार में देखी वो ये था कि एक और लड़की स्मोक कर रही थी और वो किसी कैफ़े में सामने बैठी हुई थी। यानी जो चीज़ मुझे बहुत ही हिट हुई कि मैंने कभी भी इस तरह एक मुसलमान लड़की को इतने क्लोजली बैठ के नहीं देखा। उसकी थोड़ी सी बैग थी मुझे साइड दिख रही थी, लेकिन मैं हाल हुलिये को जो देखूं लोगों के या लड़कियों के बेटियों के कपड़ों को देखूं, और आपको तो फ्लाइट्स आ रही हैं जा रही हैं, मैं जहाँ बैठी थी जाने वहाँ जाने वाले ही आ रहे थे। और मज़े की बात है कि मेरा ट्रैवल जो था ये डोमेस्टिक था, कराची से लाहौर का ट्रैवल में मैं ये एज्यूम नहीं कर पाती कि ये कोई फॉरेन फ्लाइट होगी, माइट भी होंगी, कनेक्शंस हो सकते हैं कराची से लाहौर और लाहौर से आगे, लेकिन जो लोग आ रहे थे तो मैं ये देख रही थी कि यहाँ बैठ के जो चीज़ मैं देख रही हूँ इसमें और लंदन और पेरिस और नॉर्वे और अमेरिका और कनाडा के एयरपोर्ट में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं मुझे दिख रहा। रेशियो प्रोपोर्शन का फ़र्क हो सकता है कि वहाँ अगर 90% लोग उस रंग रूप के दिखते हैं तो यहाँ मुझे 60-40 दिखे होंगे, लेकिन मौजूद थे। हैरत मुझे उन बापों पे होती है कि जिनके पहलू में बेगम ठीक ठाक मॉडेस्ट किस्म का ड्रेस पहनी होती हैं, चादर भी चले, ना निकाब हो ना पर्दा हो ना हिजाब हो, लेकिन मॉडेस्ट ड्रेस। आपको होता है कि मैंने जो ऑब्जर्व किया है हमारा पाकिस्तानी जो ड्रेस कोड है ना, शलवार कमीज़ और बड़ी चादर, ये सबसे ज़्यादा मॉडेस्ट है इनडोर ड्रेसेस में, क्योंकि इसमें कवरिंग पे कवरिंग हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह डिसेंट किस्म की आंटीज थी, बट उसी के पहलू में 15 20 18 के बीच की बच्चियाँ के जिसमें और वेस्टर्न बच्ची में मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखा। मेरा ये बिग क्वेश्चन था कि ये फ़र्क क्यों है। कुछ लोगों से तो मुझे वाजे तौर पे समझ आ रहा था कि ये या तो बाहर से आए हैं या बाहर जा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं लगा। इट्स ओके, जो भी हुआ मैं जलती कुड़ती रही। यही बुक की ही मैं तैयारी कर रही थी आपके पढ़ाने के लिए। तो मैं ये सोच रही थी कि वाकई हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम करें। अब ये वो वक्त नहीं होता कि वहाँ जाके लोगों से बात करें। खैर, जब फ्लाइट अनाउंस हुई तो उन्होंने हमें अंदर जहाज़ में भेजा। सीट्स का कुछ ऐसा इशू था कि जो सीट मेरे पास असाइंड थी वो किसी और को चाहिए थी, तो मुझे वो सिस्टर ने कहा कि आपको मैं पीछे अकोमोडेट करती हूँ। मैंने कहा इट्स फाइन, वी कैन मैनेज। जब मैं पीछे आई जहाज़ में, उन्होंने रखा तो एक सिस्टर थी जो विंडो सीट पे बैठी हुई थी और दो सीट जो थी वो खाली थी, आइल वाली और ये एग्ज़िट रो थी। तो एयर होस्टेस ने मुझे कहा कि आप इधर बैठ जाए। मैंने कहा नो प्रॉब्लम। मैं पहले इस साइड पे बैठने लगी तो फिर बैठ गई मैं इधर, तो बीच में मरे खाली आ गई। जहन में आपके तसव्वुर आ रहा होगा, आदतन मैंने आके सलाम किया तो वो जो सिस्टर बैठी हुई थी उन्होंने, मैंने यही समझा कि उन्होंने सुना नहीं है। थोड़ी देर गुजरी तो वो उनके क्रू के लोग गुजरे तो उन्होंने कहा कि सिस्टर आप इधर के बैठी हैं। मैंने कहा जी आपकी सीट है। मैंने कहा नहीं मुझे एयर होस्ट आपके, उसने कहा फिर आप इस पे नहीं इस पे आ जाएं क्योंकि ये एग्जिट रो है तो यहाँ हमारी एयर होस्ट बैठेंगी, होगा कोई वजह। मैं कहा नो प्रॉब्लम। मैं वहाँ से उठ के मिडल सीट, अब वो सिस्टर और मैं, हम दोनों साथ थे। वो मुसलसल अपने आईपैड पे कुछ गेम खेल रही थी, व्हाट्सो एवर जो भी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मुझे ऐसे ही फील कराया कि आई एम नॉट देयर, मैं उधर नहीं हूँ। मैंने भी कुछ नहीं कहा, इस फाइन, कोई बड़ी बात नहीं है, बाहर तो वैसे कोई किसी को इतना नहीं बुलाता तो ये तो कोई बात नहीं, अपने मुल्क की बात है। बाकी वही हुआ, जब जहाज़ बंद हुआ तो वो जो सीट मेरे साथ थी तो एयर होस्टेस आके बैठ गई, तो उसको मैंने स्माइल दिया। उस एयर होस्टेस से मेरी बात शुरू हो गई, मुझे कहने लगी आप कौन है, कहाँ से आती हैं। तो थोड़ी सी बात के बाद मैंने उनसे कहा कि मैं बाहर से आई हूँ तो मैं टीच करती हूँ। मैं उनसे बात कर रही हूँ, वो सिस्टर बिल्कुल हमारे साथ बैठी हुई है। बस मैं उससे इतनी बात अभी की है कि मैं बाहर हूँ, तो कहती आप यहाँ कैसे हैं और क्या है ना। तो मैंने कहा हमारा बेसिकली नेट का सिलसिला होता है तो यहाँ तो बहुत थोड़े लोग हैं, लेकिन ये कि बाहर डिफरेंट जगहों पे सेटअप है। ये बात सुन के वो बेचारी यंग लड़की सिस्टर थी तो वो एकदम गुस्से में आ गई, कहती है हाँ हाँ ये कुरान के नाम पे पढ़ाते हैं और लोगों से बम फकवाते हैं। मुझे समझ नहीं कि ये किसके बारे में कह रही हैं क्योंकि मेरा इशू नहीं। जब ये बात हुई तो जो एयर होस्टेस से मुझे कहती है अच्छा फिर आप लोग इसके पैसे लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं ये तो प्रोफेशन नहीं है, ये तो हमारा मिशन है। कहती नहीं असल में बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ कि स्काइप के थ्रू बच्चों को पढ़ाते हैं। मुझे फ़ौरन समझ आई। मैंने कहा सिस्टर आपकी मुराद ये है कि जो बच्चों को लोग नाजरा सपारा आजकल पढ़ाते हैं, तो वो तो मुझे भी पता है बच्चों को पढ़ाते हैं, ये बात बच्चों के सिनेरियो में। तो मैंने कहा हाँ मैं कोई नाजरा नहीं पढ़ाती, मेरी बात तो बीच में थी। वो सिस्टर जो थी ना वो एकदम एग्रेसिव हो गई, कहने लगी कुरान के नाम पे ये बच्चों को ख़राब कर रहे हैं ये लोग, आप लोगों को ख़राब कर रही हैं और आप लोगों को ऐसी चीज़ें सिखाती हैं, कोई कुरान सुन्नत नहीं कुछ होता। उसका एटीट्यूड एकदम चेंज हो गया, वो एग्रेसिव हो गई ना, तो बम फोड़ते हैं, आप जैसे लोगों ने इस्लाम को बदनाम किया हुआ है, ये नकाब पहनने और 5 नमाजें पढ़नी ये कहाँ होती, खुद ही बोल रही इस्लाम तो दिल में होता है। एयर होस्टेस परेशान हो रही है। तो मैंने उसे कहा कि सिस्टर आपने कुछ पढ़ा है दुनिया का? हाँ मैंने पढ़ा है, ये है वो है। इन बातों में ना तो मुझे कहेंगी ये बातें आप यहाँ कर रही हैं ना, उस वक्त तक मेरे अमेरिका में रहने की बात नहीं हुई, मुझे ज़रूरत भी नहीं थी करने की। तो मैंने कहा सिस्टर आई एम यूएस पासपोर्ट है। तो कहने की अब जाएं हज़रा आप, वो आपको नहीं आने देंगे वहाँ, वो ट्रंप ने पाबंदी लगा दी है। तो मैं स्माइल, मुझे पता भी नहीं कि उसका मेरे से कोई ताल्लुक ही नहीं और वो एयर होस्टेस से मेरी बात हो रही थी, लेकिन एनीवे वो सिस्टर इतना अग्रेसिव हुई तो बार बार मुझे कहती हैं आप करती हैं। तो मैंने कहा सिस्टर आपने मुझे सुना? नहीं नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैं नहीं सुनती सुनती ये बातें, ये कुरान सुन्नत सब ऐसे ही है, कोई 5 नमाजों की ज़रूरत नहीं है और मेरा अंदर ईमान बड़ा गहरा है। फिर जब उतने में दुआ की मेरी आदत है, मैं अपने लिए फ़ोन में से दुआ पढ़ती हूँ, तो मैंने अपने पे से खोल के पढ़ रही थी। मैंने उसके बाद एयर होस्टेस को दी तो उसने भी मेरे हाथ से लेके पढ़ी, तो मैंने उनको भी ऑफ़र की इसी दौरान जब भी हुई तो नहीं 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 मैं नहीं पढ़ती। फिर कहती मुझे आती है। मैंने कहा इट्स फाइन नो प्रॉब्लम। तो मैंने कहा सिस्टर आप बार बार ये कह रही हैं ना, आप जैसे नहीं मुझे कह रही थी आप करती हैं। मैंने कहा आपने मुझे कोई सुना है किस्सा मुख्तसर? वो इतनी हाइपर हुई और एयर होस्टेस को कहने की इनको उठाएं इधर से, मैं डर रही हूँ, मैं खौफ ज़दा हूँ, मैं तो ऐसे दीनदारों को देख के मुझे खौफ आता है, नकाब में जो लोग होते हैं वो तो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। एयर होस्टेस मुझे कहती कि आप? मैंने कहा फाइन इट्स फाइन। उसने नहीं नहीं इनको इनकी ओरिजिनल सीट पर भेजें। अब आप इमेजिन करें ना कि जिस बंदे से आपकी कोई बात ही नहीं है, और वो, ये मैं आपको थोड़ा बता रही हूँ, वो इसमें और भी एंटी इस्लाम बातें कर रही थी, क्या हुआ अगर स्मोकिंग कर लेंगे, कुछ नहीं होता, ये शराब को कौन हराम कहता है, इस तरह की बातें थी उनकी ना। तो बहरहाल वो सिस्टर एयर होस्टेस कहेंगी, सिस्टर आप इनको नहीं इधर से उठा सकती, ये हमारी खाली सीट्स थी और हमने इनको अकोमोडेट किया है। तो वो लड़की इतनी खौफजदा थी कि उसको बस नहीं चल रहा था कि शायद मैं उबामी फेंक दूंगी उसके ऊपर। उसे मैंने कहा, सिस्टर डोंट वरी, आई एम फाइन, मैंने वैसे भी अपना करना, मैंने लैपटॉप रखा हुआ था अपने पास, मैंने कहा आप जाइए हम काम करते हैं। खामोश, मैंने एक लफ्ज़ नहीं बोला, लेकिन उस मेरी ज़िंदगी में मुझे उस वक्त वही नबी सल्लम का दौर याद आ रहा था कि नकल मजनून, और सुबहान अल्लाह, यानी मेरी ज़िंदगी का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि इतनी क्लोजली किसी ने मेरे निकाब की, सिर्फ निकाब की वजह से, वल्लाही मैं तो बोली भी नहीं, सिर्फ एयर होस्टेस को बताया कुरान, और वो बच्चों की तरफ बात निकल गई जो कि मेरी बात भी नहीं थी और मेरा तो ऐसा फील भी नहीं है, लेकिन वो सिस्टर मेरे निकाब से इतनी नाला थी कि उन्होंने फिर एक इदारा, मैं नाम नहीं लेना चाहती यहाँ क्योंकि बातें ऑन एयर भी जाती हैं, बड़ा मशहूर इदारा है पाकिस्तान का, उनका नाम लेती हैं। जब उसने कहा ना आप ये करती हैं आप वो करती हैं, तो मैंने कहा सिस्टर आपने मुझे सुना है या आपको पता है मैं कौन हूँ, तो वो इदारे का नाम लिया जो मैं नहीं लेना चाहती, कहती है मुझे पता है आप सारे उस टाइप के लोग होते हैं जो भी हैं, औरतों में बड़ा फेमस इदारा है पाकिस्तान का माशाल्लाह, तो मुझे उनके नाम के साथ उन्होंने जोड़ा। मैंने कहा ये कौन लोग होते हैं, बस रहने दें, ये बम फिकवाते हैं या घर तोड़वाते हैं या लड़ाइयाँ कराते हैं, इस तरह की बात। खैर खामोश, एयर होस्टेस चली गई, मैं बैठ गई, मैंने अपना लैपटॉप खोला, उसके बाद मेरी तो उससे पहले भी कोई बात नहीं, बिलीव मी, मैंने ये खोला, अपनी दुआएं पढ़ी, मैंने उनको स्माइल दिया, कुछ नहीं हुआ, वो अपने काम में लगी, वो टिक टिक साथ वो ताश के पत्तों के साथ कुछ खेल रही थी अपना इस पे आईपैड पे थी। 15-20 मिनट गुजरे ना, तो उतने में वो खाने की सर्विंग शुरू हो गई, एयर होस्टेस मुझे कहती है आप पीछे आ जाएं पीछे आ जाएं, मुझे आपसे बातें करनी है, मुझे आपसे और बहुत कुछ लेना है, मुझे बताएं आपके कौन सी क्लासेस हैं ग्रुप्स हैं। मैं कहा सिस्टर आप जाइए मैं बाद में एंड पे आ जाऊंगी आपके पास, वैसे भी आपने भी सर्विंग करनी है ना। 15-20 मिनट गुजरे, पता नहीं क्या हुआ, ये सिस्टर जो बेचारी इतनी थी ना, उतनी देर में मैंने एक खाना जब सर्व आया तो मैंने खाना, तो मैंने ऐसी स्माइल से उनकी तरफ किया, आप लेंगी कॉफ़ी, उन्होंने कुछ नहीं लिया, और वो पहले रोस्टर से भी काफ़ी सख्ती से बोल चुकी थी अपने बैग के सिलसिले में, तो मैंने कुछ नहीं कहा, बस स्माइल, कॉफ़ी ले लेंगी जी ना। 5-10 मिनट गुजरे तो मेरी तरफ ऐसे मुझे करके ना आंखों में आंसू, मुझे माफ़ कर दें, सॉरी मैंने आपको इतना कुछ कहा, यानी उसकी काबिलिटी भी, मैंने उसको प्यार से ऐसे किया ना, वो हो गया ऐसे 30s में, मतलब मैं भी यंग लड़की थी, अल्ट्रा मॉडल लड़की थी, लेकिन मैंने उसको पूछा आप मैरिड हैं, कहती नहीं, आई थिंक सो 28-30s में होंगी, तो मैंने उसको ऐसे प्यार में कि इट्स ओके, मुझे, मैंने माइंड नहीं किया, आई एम सॉरी, बट यहाँ आजकल दीनदार हैं सारे ऐसे ना, वो देखो मैं एक जगह गई तो एक बुरके में थी, तो उन्होंने कहा ये स्लीवलेस आपने क्यों पहने हुए, आप जहन्नुम में जाएंगी। मैंने कहा अगर उन्होंने वाकई आपको ऐसे कहा तो बहुत बुरा किया, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, मेरी अम्मी भी बड़ी नाल है, लोग महफिलों में जाके उनको वो करते हैं, या जब उसने ये बात बोली ना कि दीनदार लोग बड़े बुरे तरीके से हमें ट्रीट करते हैं, जहाँ देखूँ कोई ऐसा मिल जाता है, और सिगरेट नहीं पियो, जो ही उसने लफ सिगरेट बोला ना, तो मुझे मेरे लास्ट शोर में आ गया, एयरपोर्ट पर जो सिस्टर साइड पर थी वो यही थी, तो मुझे समझ आया कि एक लड़की का ये इशू है। फिर मैंने उसको प्यार किया, मैंने कहा देखें मुझे आपने कुछ कहा ही नहीं, आप तो मुझे जानती नहीं है, लेकिन सिस्टर मैं ये समझ गई हूँ कि आपके दिल में बहुत एग्रेशन है इस्लाम के बारे में, तो मुझे पता है कि समटाइम लोग तबलीग के नाम पे कुछ ऐसे काम करते हैं कि आप जैसे लोग हर्ट हो जाते हैं, तो ऐसी बात नहीं। फिर जो हमारी बातें शुरू हुई उसके बाद, वो एयर होस्टेस को तो खतरा यह था जब उठ के गई कि पता नहीं अभी धमाका हो जाना है और ये दोनों लड़के हाथ पांव पड़ी होंगी, तो एयर होस्टेस जब उतने में खाने का टेबल लेके आई, तो उसने जब हमें बातें करते देखा, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी खुद बुद लगी हुई थी, फिर बहरहाल यह कि फिर हमारी अच्छी बात होती, फिर वो मेरे से पूछती रही है ऐसी, फिर मैं उसको थोड़ा बताती रही, मैंने कहा देखें सिस्टर असल बात यह है ना कि हम आज अपने दीन को समझ नहीं पाते, मैंने कहा आपने कुरान पढ़ा है, नहीं नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है पढ़े, मैंने पढ़ा हुआ है कुरान, मेरे पेरेंट्स हैं रिलीजियस हैं और वो, मतलब मैं रिलीजियस नहीं हूँ, मैंने उसको एक साइड देते हुए ये समझाया, मैंने कहा सिस्टर असल में पाकिस्तान में रहती हैं ना, तो डोंट वरी, यहाँ तो सब इतने अच्छे लोग हैं, सब मुस्लिम्स हैं, लेकिन यू नो अमेरिका और बाहर में तो अब हमारी कुछ जनरेशन का ये हाल है कि वो कहते हैं कि हम तो मुस्लिम भी नहीं, तो मुझे कहती ये तो मैं भी कहती हूँ मैं मुस्लिम भी नहीं, क्या ज़रूरत है ख़ुद को मुस्लिम कहने की, और वो, मैंने कहा वो आप ऐसे ही कह रही हैं, मुझे पता है आपको इस्लाम अच्छा लगता है, नहीं, हमारे पेरेंट्स तो रिलीजियस हैं बट मैं तो कोई रिलीजियस नहीं, ये मदरसा सिस्टम, यहाँ से ऐसे लोग निकल रहे हैं वैसे निकल रहे हैं, तो मैंने उसे कहा आप कभी मदरसे में गई हैं किसी, नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं, तो घर में पढ़ो, माँ खुद पढ़ाती है बच्चे को ना, तो मैंने कहा अच्छा आपने दुनिया का पढ़ा है? हाँ हाँ मैंने ये पढ़ा। तो मैंने कहा घर में तो नहीं पढ़ा ना। कहने का मतलब ये कि वो एलर्जिक थी इस्लाम से। कहने लगी मैं तो खुद नहीं मानती कि इस्लाम का लफ्ज़ लगाने की ज़रूरत है, बस अंदर से अच्छे हो जाओ, मेरी तो ज्यूज़ फ्रेंड्स भी हैं वो भी हैं। फिर जब उसको ये पता चला कि मैं तो रहती अमेरिका में, और फिर मैंने उसको कुछ नॉर्वे की बातें सुनाई, कहानियाँ इधर उधर की, तो सारी बातों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम यानी एंड पे बिल्कुल वी बिकेम फ्रेंड्स। और फिर वो एयर होस्टेस से जब मेरी बातें हो रही थी, पूछे आप यहाँ क्या करेंगे, उसने मेरा नंबर लिया, फिर मैंने उसको ऐड किया, लाहौर के दरसों का बताया, वट एवर जो भी था। तो वो सिस्टर सुन रही थी हमारी बातें, क्योंकि इतना क्लोज तो हम बैठे होते हैं, कोई पीछे सो नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे खुशी है कि उसका गुस्सा दूर हो गया, और मुझे तो गुस्सा आया भी नहीं वल्लाह ही। मुझे वो गाली भी दे देती, मुझे थप्पड़ भी मार देती, मुझे गुस्सा नहीं आना था, बल्कि मेरी वो तैयारी करवा रही थी। उस वक्त फिर मैंने आपकी इस किताब को पढ़ाने की जिम्मेदारी को ज़्यादा शिद्दत से महसूस किया। आपको ये सारी कहानी मैंने क्यों सुनाई है कि आज के दौर में हम मुसलमानों की नस्लें, हम मुसलमान मुल्कों में रहने वाले, हमारे पेरेंट्स वो नमाज रोज़ा कुरान दीन हम सुन सुन के बड़े हुए हैं ना, जब उनमें से एक किरदार ऐसा है, ये तो सिर्फ एक मॉडल था ना, तो फिर कितनी ज़रूरत है। मैंने रात को अल्लाह से फिर दुआ की कि अल्लाह शुक्र है तेरा कि तूने मुझे इस काम की अहमियत पे माइल किया है, वरना ये अगर मैं ज़रूरत महसूस ना करूँ मैं क्यों आपके साथ बैठूँ। एयर होस्टेस मुझे कहती है कि आपकी ज़िंदगी जो आपने काम लिया हुआ ये तो बड़ा अहम काम है। खैर उसके बाद जब मैंने उसको बात सिस्टर से कहा, मैंने कहा सिस्टर एक्चुअली मेरी फ़्लाइट संडे की थी, मैंने 2 दिन पहले आना था हम लोगों ने, लेकिन कुछ रीजंस थी जिसकी वजह से हम लोग नहीं आए, तो कल का हुआ ना। तो मैंने आप उस सिस्टर का हाथ हाथ में लिया, मैंने कहा सिस्टर जज़ाकअल्लाह खैर, थैंक यू सो मच कि मुझे अब समझ आया है कि मेरी फ़्लाइट संडे की बजाय ट्यूसडे की क्यों हुई है। बिकॉज़ अल्लाह का प्लान था कि मैं आपसे मिलूं, और आज की मेरी सिटिंग से अगर आपको 5% भी इस्लाम या इस्लाम वालों या दीन वालों से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए तो इट्स माई सक्सेस। मैंने कहा सिस्टर आई विल शेयर, मैंने उसको बताया कि कल सुबह मेरी एक क्लास है तो मैंने वहाँ जाना है, तो मैंने उन्हें कहा कि आई विल शेयर दिस स्टोरी एंड यू विल गेट द रिवॉर्ड। आपकी ये बातें या जो मेरी आज हुई हैं मैं वहाँ शेयर करूँगी और इंशाल्लाह आपको इसका सवाब मिलेगा, क्योंकि आपने मेरी इस मौजू को तैयार करने में मदद की है। तो बात यही है कि दर्द पैदा करने की ज़रूरत है, कि लोगों को बुराइयों से रोकना और नेकियों का हुक्म देना, इसकी कितनी ज़रूरत है। मैं कल परसों भी जो भी मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ, मैंने मेरे साथ एक बहुत ही प्यारी मेरी आंटी थी, तो मैंने उन्हें कहा कि मेरा ख्याल है कि हम पाकिस्तान में रहने वाली सिस्टर्स को 1 साल कपड़े ख़त्म, बाज़ारों के चक्कर ख़त्म, जूतों की सेल ख़त्म, अल्लल बल्लल छोड़िए, जो खाना अच्छा नॉर्मल कम वक्त लेकर पके घर, जो चीज़ें लेस टाइम टेकन है कम वक्त लेती हैं उसको करें, और हम सबको मिलके ये काम करने की ज़रूरत है। मैंने ये सोचा है कि अगर हम देखें ना तो बिजली पानी गैस मक्खियाँ जो कुछ भी छोटे बड़े इश्यूज, ये इशू नहीं है, हमारा इशू शऊर की कमी का इशू है, और शऊर आता है इल्म से। अगर आप सूरत बकरा याद करें तो मुनाफिकीन के टॉपिक में 2 दफ़ा उस रुकू में आता है ला यशुरून, उनको शऊर ही नहीं है। हमें आज इस बात का शऊर नहीं है कि इर्द गिर्द गंदगी और बुराई और खराबियां कितनी फैल रही हैं, और हम कपड़े बना रहे हैं और हम जूतों के पीछे भाग रहे हैं और हम मज़े मज़े के खाने खा रहे हैं। ज़रूरत है कि हम सब मिलके मुआशरे की असल गंदगी दूर करें।